नमस्कार, क्विंट हिंदी पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं हमारी नई पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगी यूपी पॉलिटिक्स की सभी बड़ी खबरें और यूपी को जानने वाले बड़े एक्सपर्ट से सटीक एनालिसिस। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स, यूपी इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है और हम जानते हैं कि इस प्रदेश की सत्ता देश की सत्ता के लिए कितनी जरूरी है। तो यूपी के चुनावी मैदान में कैसे घूमेगा सत्ता का पहिया, कौन तय करेगा यूपी की किस्मत, युवा, औरतें, किसान, धर्म, जाति या ऑल ऑफ द अबव। आप सुन रहे हैं अपने होस्ट प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। तो ये जो यूपी है ना, इसका पहले चरण में मतदान होने को अब केवल 9 दिन बचे हैं और उससे पहले पेश हुआ बजट सवाल खड़ा करता है कि इस बजट में यूपी के लिए क्या खास है। आम जनता जिसकी नजर टैक्स पर होती है, सरकार ने उसमें ना ही कोई बढ़ोतरी की है और ना ही कोई इसमें राहत दी है। इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे इस आम बजट का यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस बजट में यूपी के लिए क्या खास है। बता रहे हैं क्विंट हिंदी के पीयूष राय जो उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर कर रहे हैं।
प्रतीक, अगर आपको आज जो आम बजट पेश हुआ है इसमें अगर कुछ फाइन पॉइंट्स देखें जो यूपी और स्पेशली यहाँ पे जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए दो तीन ऐसी चीजें हैं पूरे बजट में जिससे यहाँ पे लोगों को थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो एमएसपी पे है। किसान आंदोलन इस साल और पिछले साल की सबसे ज्यादा जो है सरकार को बैकफुट पर रखने वाली एक एजिटेशन रही है। और उसके बाद जो है किसानों की एक मांग थी कि एमएसपी गारंटी पे कानून आना चाहिए। तो वो मांग तो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस बजट में अब आया है कि 1208 लाख मेट्रिक टन गेहूं और जो चावल की फसल है वो फार्मर से प्रोक्योर करेंगे और इसका जो गेहूं और ये जो धान का जो पैसा है वो तकरीबन इनके इनके कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ 2.37 लाख करोड़ है। तो ये जो पेमेंट है ये डायरेक्ट ये इनके अकाउंट्स में की जाएगी। अब आप ये देख के चलिए कि जैसे गन्ना है तो गन्ना का जो एफआरपी है उसपे जो गन्ना भुगतान होता है वो नियम के हिसाब से 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मली इन प्रैक्टिकलिटी ये नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर किसानों के अंदर एक बड़ा रोष रहता है पेमेंट्स को लेकर। तो उसको यहाँ पे देखिए बजट में कुछ स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें आप देखेंगे और भी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको एड्रेस नहीं किया गया है। लेकिन अभी भी करोड़ों रुपए जो है स्पेशली वेस्ट यूपी में जो गन्ना किसानों का जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। और एक प्रोविजन ये भी है कि अगर 14 दिन से ज्यादा हो जाता है तो उसपे ब्याज भी मिलता है, लेकिन ब्याज तो छोड़िए जो उनका मूल पैसा है वही सालों साल फंसा रह जाता है। तो जब ये बजट आया और इसमें जब एमएसपी की बात की गई तो जो सबसे ज्यादा मंडियों में या फिर जो मिल में जो सबसे ज्यादा जो कोई क्रॉप जाता है तो यहाँ शुगर केन है, लेकिन उसकी पेमेंट जो है स्ट्रीमलाइन नहीं हुई हो पाई है। दूसरा है मेन पॉइंट में वो है इम्प्लीमेंटेशन जो ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो केन और बेतवा जो है वो यमुना नदी की दो ट्रिब्यूटरीज हैं। केन का मेजर पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है और बेतवा जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो जो अब ये किया जा रहा है कि केन का जो ज्यादा पानी है वो बेतवा में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि बुंदेलखंड का जो पानी की किल्लत से जूझ रहा जो इलाका है जैसे आपका झांसी हुआ, बांदा हुआ, जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो इलाका है जहाँ पे सालों साल मतलब पूरे साल जो है पानी की किल्लत रहती है, तो वहां पे किसी तरीके से पानी की किल्लत को कम करने के लिए ये रिवर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, अगर मुझे सही से याद हो तो 1982 में ये जो है प्रोजेक्ट पहली बार जो है इसको एनविजन किया गया था, लेकिन बहुत ब्यूरोक्रेटिक रेटिपिज्म और कई सरकारें जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी इसे इम्प्लीमेंट कराना चाहती थी, नहीं हो पाया। अब मोदी सरकार ने इसको लिया है। तीसरा मुद्दा भी प्रतीक जो है इसमें किसानों से ही जुड़ा हुआ है और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है 5 किलोमीटर के दायरे का गंगा कॉरिडोर चुना है। तो गंगा कॉरिडोर में फिर से जो है गंगा का एक बड़ा पोर्शन जो है, सबसे बड़ा पोर्शन उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो अभी किसान करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बहुत रैम्पेंट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है सॉरी। तो अब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में ले आने के लिए और इनसे होने वाले फायदे और जो इसकी उपज से जो किसानों को फायदा होता है और इस फार्मिंग में को करने के लिए जो स्किल सेट होने चाहिए, इन सबको इम्पार्ट करने के लिए मुझे लगता है कि इस बार जो है बजट में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी फोकस रखा गया है।
शुक्रिया पीयूष हमें इसे डिटेल में समझाने के लिए। और अब आपको किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे योगेंद्र यादव को सुनवाते हैं, उनकी इस बजट को लेकर क्या राय है।
इस बजट के बारे में एक बात तय है, किसान आंदोलन से हारी हुई सरकार इतनी तिलमिलाई हुई है, इतनी अपमानित है, इतनी गुस्सा है कि अब किसानों से बदला लेने पर उतारू है। पहले के बजट में किसानों को पैसा तो नहीं मिलता था, बस सुंदर सुंदर डायलॉग मिला करते थे, ये घोषणा वो घोषणा कुछ नाम के लिए किया जाता था। इस बार ना पैसे हुए ना नाम की घोषणाएं हुई और डायलॉग भी नहीं मिले कि छोड़ो अब क्या करना किसानों का, जाओ भाड़ में जाओ, बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है। चुप्पी मिली है इस बजट में किसानों को। 2022 वो साल था जबकि 6 साल में किसानों की आमदनी दुगना करने का काम पूरा होना था। पिछले 5 साल से वित्त मंत्री डमरू बजा रहे हैं इसका, डबलिंग 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 डबलिंग, और इस बार जब डबलिंग होनी थी चुप, एक शब्द नहीं बोला।
लेकिन इस बजट का यूपी के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या इस बजट से किसानों की नाराजगी दूर होगी? क्योंकि खासकर पश्चिमी यूपी में किसान की नाराजगी को बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है पत्रकार पार्थ एमएन, जो पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया से जुड़े हैं।
बहुत बहुत स्वागत है पार्थ जी आपका।
थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
तो पार्थ जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस बजट को चुनावी बजट कहेंगे या नहीं, और अगर इसमें यूपी पर कितना फोकस किया गया ये भी बताइए। जी
एक जो है उन्होंने कहा है कि 1208 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट और पैडी, मतलब जो धान और गेहूं है वो 163 लाख किसानों से खरीदा जाए। तो ये यूपी की बात उन्होंने की है, प्लस कैन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात उन्होंने की है, जो भी जो जो यूपी के बारे में है। लेकिन उसके अलावा ये काफी नॉर्मल बजट है जिसमें यूपी के लिए स्पेसिफिकली बहुत कुछ अलग से नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो इस बजट में कहा है कि 1208 लाख मेट्रिक टन गेहूं और धान 163 लाख किसानों से खरीदे जाएंगे यूपी में, और ये एक यूपी रिलेटेड बात इस बजट में दिखी है। केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की है जो बुंदेलखंड में काफी सालों से प्लान्ड है, और वो बुंदेलखंड में यूपी और एमपी दोनों तरफ के लोगों की बात करता है। जो पहली बात कही है उन्होंने कि धान और गेहूं खरीदेंगे, उसमें पेपर में ये अच्छा लगता है कि एमएसपी मिलेगा किसानों को ज्यादा, लेकिन जब वो किसान मंडियों में जाते हैं तो उनको काफी दिक्कतें होती है। अगर आप देखेंगे किसी भी किसान से जाके पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जब जब मंडियों में धान या गेहूं खरीदा जाता है तो काफी सारी दिक्कतें उनको आती हैं। एक तो मंडियां उनके घर के पास नहीं होती, गांव के पास नहीं होती, तो उनको पैसे खर्चा करके दूर मंडियों में जाना पड़ता है। फिर वहां पे काफी लंबी लाइन होती है और कोई गारंटी नहीं होती कि उनका माल बिकेगा। काफी जो 17% मॉइस्चर का जो कंडीशन है उसके वजह से काफी सारे लोगों का जो जो स्टॉक होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए काफी सारे किसान फिर सोचते हैं कि इससे अच्छा वेट करना पड़ेगा, पैसे इमीडिएटली नहीं मिलेंगे और कोई गारंटी नहीं है पैसे खर्चा करके हम जाएंगे मंडियों की तरफ। तो इससे अच्छा है कि गांव में ही किसी बीच में ट्रेडर को बेच दें, और जो ट्रेडर इवेंचुअली आपको बहुत कम पैसे देगा, मतलब जो एमएसपी होती है उससे तो काफी कम ही पैसे देगा। अगर आप 2016 नीति आयोग का एक स्टडी, तो 28% किसान उत्तर प्रदेश के हैं जो एमएसपी पे अपना माल बेच सकते हैं, बाकी 63% 63% जो ट्रेड है वो ओपन मार्केट में होती है, बाकी 8% है जो अपने खुद खाने के लिए, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं। तो ये प्रॉमिस तो किया है उन्होंने, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, किस तरह से क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिलेगी, और कितनी मंडियों में जाके, कितनी मंडियों में किसान जा पाएंगे, ये देखना अब जरूरी हो गया है।
तो पार जी, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर किसानों का अच्छा खासा प्रभाव है, और बीजेपी के लिए इस बार इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। और अभी क्योंकि बजट के जरिए सरकार के पास ये अच्छा मौका था कि किसानों को वो खुश करे कुछ नई स्कीम के जरिए, तो क्या ये बजट किसान की नाराजगी को दूर कर पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है?
नहीं लग रहा मुझे। एक तो उन्होंने खाद की सब्सिडी कम कर दी है, तो वो मेरे ख्याल से उनको दिक्कतें आएंगी किसानों को। फिर काफी सारे किसान जो है वो मजदूरी भी करते हैं, मनरेगा का बजट इन्होंने कम कर दिया है, खासकर इस समय पर जब माइग्रेंट वर्कर्स काफी सारे शहरों से अपने गाँव में वापस आए हैं। उनमें से सारे वापस शहरों में नहीं गए हैं, कुछ लोग अभी भी गाँव में ही है और उनको गाँव में काम की जरूरत है, और मनरेगा एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को गांव में काम मिलने का। तो मनरेगा का बजट अगर कम हो गया है तो वो भी मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी को एक अफेक्ट करेगा। पश्चिमी यूपी की बात करें तो लोग काफी नाराज है, मैं घूम तो रहा हूँ पश्चिमी यूपी में, और ये बजट मुझे नहीं लगता उनको बहुत खुश करेगा, क्योंकि गन्ने की जो पेमेंट है वो काफी टाइम से नहीं हुई है। फिर 700 किसानों की जो मौत हुई बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करते वक्त, तो वो मेरे ख्याल से वो नहीं भूले हैं। तो वो इसीलिए पश्चिम यूपी में जो जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत दिख रही है वो उसी की वजह से है, और मेरे ख्याल से ये बजट उसको काउंटर नहीं कर रहा।
हाँ बिल्कुल, नहीं सरकार अगर चाहती तो किसानों से बात करके और उसके बाद भी वो बजट में फिर चीजों को कर सकती थी, लेकिन पूरा इग्नोर कर दिया गया एक तरीके से। इसके अलावा पार जी, मुजफ्फरनगर में क्विंट हिंदी ने जब किसानों से बातचीत की, हम एक चौपाल करते हैं उसमें, जब पूछा गया कि किसानों को बजट से क्या उम्मीद है, तो उनका ये जवाब था कि सरकार जो सालाना ये 6,000 देती है, जो 2,000 तिमाही का दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार ने एक तरीके से किसानों को खरीद लिया है। तो किसान भी ये चाह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया, जो आय को दोगुनी करने का जो वादा था कि 2022 तक आय को, किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी, तो इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान है या नहीं? ऐसा लग रहा है कि ये एक तो वादा पूरा हुआ नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या असर है, और दूसरा ये बजट उस उद्देश्य को कितना पूरा करता हुआ दिखता है?
देखिए, जब 2016 में मेरे ख्याल से मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय 22 तक दोगुनी करेंगे, अब 22 तो आ गया है, और 16 से लेके आज तक मैं एग्रीकल्चर कवर कर रहा हूँ, और मुझे तो कहीं किसानों की समस्या कम होती हुई नहीं दिख रही, उनकी आय बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स बढ़ ही रहे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो एक दलवाई कमेटी थी जो ये सब को रिव्यू कर रही थी, किसान डबलिंग फार्मर्स इनकम और वो सब, वो दलवाई कमेटी ये कर रही थी, रिव्यू कर रही थी, और एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि किसानों का जो रियल इनकम है वो 10.4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ना चाहिए अगर 22 तक इसको, किसानों की आय दुगनी करनी है जी। लेकिन 2017 तक का जो डेटा है, अशोक गुलाटी जी ने सेम जो प्रिंसिपल्स मेथोडोलॉजी जो दलवाई कमेटी ने यूज की थी, वही मेथोडोलॉजी यूज करके अशोक गुलाटी ने जब कैलकुलेट किया, 2013 से लेके 2017 तक किसानों का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो बस 2.5% है। तो 5% था रादर, तो 10.4% की जरूरत थी CAGR होने की, लेकिन वो CAGR 2017 तक 2.5% था। अब उसके बाद ऐसी कोई ड्रास्टिक घटनाएं नहीं घटी हैं जिसमें किसानों का इनकम डबल हो गया है, बल्कि पिछले 1-1.5 साल में तो अगर हम आप देखेंगे तो जो 3 फार्म लॉज थे उस पे किसान कह रहे थे कि हमारी जो इनकम डबल होने के बजाय कम हो जाएगी, इसीलिए किसान रास्ते पे उतरे थे। तो क्लियरली 1.5 साल पहले तक भी किसानों का इनकम डबल नहीं हुआ था, अगर डबल हुआ होता तो वो रास्ते पे नहीं आते। और दूसरी बात, जो पेट्रोल महंगा होता है उसका नुकसान सिर्फ मिडिल क्लास को ही नहीं होता, क्यों, लेकिन बल्कि किसानों को भी होता है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो काफी जो फ्यूल महंगा होता है जब, तब काफी सारी एग्रीकल्चर की जो इनपुट्स है वो भी महंगी हो जाती है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, और उस प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रहा, ये किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
ओके okay. बहुत बहुत शुक्रिया पार जी क्विंट हिंदी से बातचीत करने के लिए।
थैंक यू सो मच।
तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।